चलिए रुकू नंबर 11 देखते हैं। इन्ना अनजलन तौरात फीहा हुदं व नूर يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا, हम ने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है, यहूद में इसी तौरात के साथ अल्लाह को मानने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अहले इल्म और उलमा फैसले करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो और सिर्फ मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर ना बेचो। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसले ना करें वो पूरे काफिर हैं। हमने यहूद के जिम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, और खास जख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ़ कर दे तो वो इसके लिए कफ़ारा है, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक हुक्म न करें वही लोग ज़ालिम हैं। वकफ़ैना अला आसारिहिम, और हमने इनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने इन्हें अंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करती थी, और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी नेक लोगों के लिए। वल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंजल अल्लाहु फी, और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया है इसी के मुताबिक हुक्म करें, और जो अल्लाह के नाजिल करदा से हुक्म ना करें वो फासिक हैं। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है, इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ हुक्म कीजिए। इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे न जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और एक राह मुकर्रर कर दी है। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो तुम सब को एक ही उम्मत बना देता, और इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आजमाए। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सब का रुजू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर चीज बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहते हो। आप इनके मामलात में अल्लाह की नाजिल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म कीजिए। इनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी न करें, और इनसे होशियार रहिए, कहीं ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर न कर दें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही है कि इन्हें इनके बाज गुनाहों की सजा ही दे डाले, और अक्सर लोग नाफरमान ही होते हैं। अफहुक्मुल जाहिलियति यबगून, क्या ये लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? रुकू नंबर 11, इसका उन्वान क्या है? अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में जाहिलियत की शरीयत। 5 मुख्तलिफ बातों को हमने इस रुकू में देखा। नंबर 1, तौरात के हवाले से। तौरात क्या थी? अपने वक्त में हिदायत थी और रोशनी थी। सारे नबी इसी के मुताबिक फैसले करते थे, उनके बाद उलमा और फुकहा भी इसी के मुताबिक फैसला करते थे, और इसकी हिफाजत का जिम्मेदार उलमा को बनाया गया। उसके बाद इंजील का जिक्र है। इंजील के 4 वसफ बयान हुए इस रुकू में। नंबर 1, हिदायत और रोशनी। नंबर 2, तौरात की तस्दीक करने वाली। फिर अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत। और 4 बात, अहले इंजील इसके कानून के मुताबिक फैसला करें। इसके बाद 3 बात कुरान पाक के नाते से हुई जो हम सबके सामने मौजूद है। 4 वसफ हैं कुरान पाक के। नंबर 1, पिछली किताबों की तस्दीक करता है। आज जिन लोगों को ये शौक है ना कि वो तौरात और इंजील पढ़ें, वो कुरान को पढ़ लें, क्योंकि कुरान पाक में वो मौजूद है। दूसरी चीज़ मुहाफिज और निगहबान है। कैसे? कि पिछले दौर में लोगों ने अपनी किताबों में जो तब्दीलियां की, किताब कुरान पाक ने उस पोल को खोल दिया। तीसरी चीज़ क्या है? अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसले करो। और चौथी बात क्या है? कि अल्लाह की शरीयत को लोगों की ख्वाहिशात की वजह से ना बदलो। इन तीनों किताबों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने अपना कानून बताया, और बहुत ज़बरदस्त बेलाग कानून है। नंबर एक, जो अल्लाह के उतारे हुए के मुताबिक फैसला ना करें, यानी अल्लाह की किताबों पे जो कौमें अमल नहीं करती वो काफिर हैं, जालिम हैं और फासिक हैं। दूसरी, इससे हमें ये बात पता चली कि किताबें अमल के लिए आती हैं, कि उससे कानून अखज़ किए जाएं। और तीसरी बात पता चली कि वो लोग जो इस्लाम के कानून को नाफिज करने की बजाय कोई और कानून नाफिज करते हैं, तो वो जाहिलियत का कानून है। आप उसका नाम जितना मर्जी खूबसूरत रख लें, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इस्लाम के निज़ाम के बाद हर निज़ाम जाहिलियत का निज़ाम है, और अल्लाह ताला से भड़के कोई फैसले नहीं कर सकता। हमारे लिए अमल की बात इस पूरे रुकू में क्या निकली? कि हमने इस कुरान से हिदायत लेनी है, सिर्फ इसको चूमना ही नहीं, हमने इस किताब की रोशनी में अपनी जिंदगियों को रोशन करना है, हमने इस किताब के कानून को नाफिज करना है। आप कहेंगे हम कैसे करें, हम तो किसी मुल्क के हुक्मरान नहीं। सवाल आता है, फला मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं, हम क्या करें? तो उसको हम दो तरह से करेंगे। नंबर एक, ऐसे रहनुमाओं को मुंतखब करें जो इस्लाम के निज़ाम को मुल्क में लाएं, ऐसे लीडर लाइए, ऐसे लोगों को वोट्स दीजिए। और दूसरी बात इससे पहले कि वो क्या है, कि हम अपने अपने घरों में निज़ाम इस्लाम का ले आएं। हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इतने करोड़ों की आबादी के मुल्क में इस्लाम क्यों नहीं आया, लेकिन ये हमसे ज़रूर पूछा जाएगा कि तुम्हारे 1,000 गज के घर में इस्लाम क्यों नहीं आया, तुम्हारे 5 बच्चों में इस्लाम क्यों नहीं था, तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे करीब रहने वाले, उनकी ज़िंदगियों में इस्लाम क्यों नहीं था। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जब हम में से हर एक अपने अपने घर को सुधार लेगा तो मुल्क खुद बहुत सुधर जाएंगे। जब गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो किसी के बस में नहीं रहती, तो लिहाजा हर एक को कहा जाता है कि तुम अपने हिस्से का साफ कर लो, अपना कमरा साफ कर लो। जब सारे लोग अपना अपना कमरा साफ कर लेते हैं तो फिर घर वाली खातून को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ ज़रूरी चीज़ों के बाद वो घर को साफ कर सकती है। इसी तरह आज हम चारों तरफ देखते हैं कि बेदीनी है, इस्लाम से दूरी है। मुसलमान मुल्कों के अंदर भी ऐसे गुनाह आम हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं था नबी सल्लम के दौर में। लिहाजा इस वक्त मैंने क्या करना है? अपने हिस्से का काम करना है। वही बात कि मेरी तो चोंच हितनी थी, मेरा बस और किसी पर नहीं चलता तो अपनी ज़ात पर तो चल सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बेबसी का इजहार किया था कि अल्लाह मैं तो बस अपना या अपने भाई की बात कर सकता हूँ, ये तो मेरी कौम मेरी नहीं मानती। तो कल क़यामत के दिन हम में से हर एक अपनी ज़ात के बारे में जवाबदेह होगा, अपने घर वालों के बारे में जवाबदेह होगा। नबी सल्लम की बड़ी वाज़ह हदीस है कि तुम में से हर एक राई है और हर एक से उसकी राइयत के बारे में पूछा जाएगा। हमारे बच्चे हमारी फ़ौज हैं, हमारी आर्मी है, आज वो दुनिया में कैसा जीते हैं हमें मालूम होना चाहिए। और एक आखिरी आयत के नाते से बात जो हमने इसमें सीखी, हुक्मुल जाहिलिया, लिखिए अपने पास, इस्लाम के आने के बाद मैं जाहिलियत की कौन कौन सी चीज़ों को अपनाए हुए हूँ। देखिए कि इस्लाम से पहले का तमाम ज़माना दौरे जाहिलियत कहलाता है। मसलन आप देखिए, दौरे जाहिलियत की कुछ चीज़ें इशारतन दे देती हूँ कुरान और सुन्नत से ही, बाकी लिस्ट आप खुद बनाएंगे। मसलन इस्लाम से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, ये जाहिलियत की रस्म है। क्या आज तो ऐसा नहीं होता? और अपने लिए लिखें क्या मैं बेटी की पैदाइश का सुन के उस बच्चे को अबॉर्ट तो नहीं करवा देती? ये बहुत बड़ी जाहिलियत है जो आज के मॉडर्न दौर में हो रही है। और एक चीज जाहिलियत की अल्लाह ताला ने आगे सूरत अहज़ाब में आप पढ़ेंगे कि कर नफी वयूतिकुन वला तबर रच न तबर रजुल जाहिलियतिल उला। ए औरतों, घरों में टिकी रहो और दौरे जाहिलियत का सा बनाओ सिंघार करके ना फिरो। इस पे भी अपना अमल देखना है और बाकी चीजें आप खुद ढूंढेंगे नबी सल्लम के दौर से पहले की वो सारी चीजें। मुझे लगता है कि आज नाम बदल के सब कुछ आज के माशरे में आम हो चुकी। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को बचाए। रस्म और रिवाज को देखिएगा, शादी ब्याह की रस्मों को देखिएगा, मरने जीने की चीज़ों को देखिएगा, ये सब चीज़ें जाहिलियत की रस्में हैं। जब इस्लाम जिंदगी में आए तो ज़रूर रोशनी फैलनी चाहिए और ज़िंदगी के अंदर एक वाज़ह तब्दीली आनी चाहिए। रुकू नंबर 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस ही में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादिम होने लगे। और ईमान वाले कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे के साथ अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके आमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे, वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफार पर। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करेंगे। ये है अल्लाह का फजल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और इसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वह रुकू खुशू व खुजू करने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह से और उसके रसूल से और जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे वो यकीन माने कि अल्लाह ताला की जमात ही गालिब रहेगी। ये था रुकू नंबर 12। इसका उन्वान क्या है? रफाकत बदल डालो, यानी अपने दोस्तों को बदल दो। कल तक दोस्त कुछ और थे, आज दूसरे दोस्त बना लो। छह बातें बताई अल्लाह ताला ने हमें दोस्ती के नाते से। पहली बात, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये दोस्ती जुल्म का सबूत है। अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। मुनाफिक इसी दोस्ती की दौड़ धूप करते हैं और ये दोस्ती सब आमाल को जाया कर देगी और ये दोस्ती दीन से फेर देगी। अब ये छह बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की बातें सुनने के बाद भी अगर कोई इंसान उन्हीं तरीकों को अपनाए, उसी रास्तों पे चले जिस पे ये चलते हैं, तो फिर वही बात है कि इंसान खुद अपना दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इस रुकू में दूसरी बात जो बताई वो किनकी बताई? जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एक तरफ है अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत करने वाले, उनका हसारा देखा। दूसरे वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और ये आयतें सूरत मायदा की खूबसूरत तरीन आयात हैं। आयत नंबर 54 से 55 तक दो आयतें हैं, आठ खूबियां हैं। और हमने इस नियत से सुननी है कि अपने अंदर इंशाल्लाह इन सिफात को पैदा करना है। नंबर एक, अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है और उनसे भी मोहब्बत करनी है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कल की दुआ थी आपकी ये भी। इसी तरह दूसरी बात, मोमिनों पे नरम होना है, काफिरों के लिए सख्त होना, अल्लाह की राह में जिहाद करना और मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरना, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है और अल्लाह के आगे झुकना है। जिसके अंदर ये खूबियाँ आ जाएंगी ना, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपना काम करने का मौका देगा। हमारे अमल की बातें पूरे रुकू में खुलासे के तौर पे क्या निकली कि हमने सच्चे दीन का अलम बरदार बनना है, अपने अंदर ये 6-7 सिफात पैदा करनी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें चुन लेगा। आपने इस आयत का अंदाज़ अगर देखा हो तो बड़ी तंबीह वाला अंदाज़ है कि अगर तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ नहीं होंगी तो अल्लाह तुम्हें निकाल देगा और दूसरों को ले आएगा। आज के मुसलमानों के लिए ये आयत काबिले गौर है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आयत 54 को। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम अपने हिस्से का काम नहीं करोगे तो मैं दूसरों से ये काम करवा लूंगा। उम्मत मुस्लिमा को एक जॉब दी थी अल्लाह ताला ने, किस बात की? शहादत हक की गवाही। वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास। आज मुसलमान ख्वाहिशात की तरफ चल पड़े, हक की गवाही का काम छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने इस आयत को कैसे पूरा कर दिया? गैर मुसलमों को इस्लाम की तौफीक दी। पहले मुसलमान होते हैं, फिर इल्म हासिल करते हैं, मक्का मदीना इजिप्ट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ सीख के आते हैं और बाद में आके हम मुसलमानों को तबलीग करते हैं। शायद आपको ये चीज़ मालूम हो कि ना हो, इस वक्त जितने अच्छे स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके सीडीज, जिनके डीवीडीज, वीडियोस, वो उनमें 90% जो है वो कन्वर्टर्स हैं। यहाँ जितने इंग्लिश जुबान में आप देखते हैं, जब मैं किसी न्यू मुस्लिम यानी जो आज से 7-8 साल पहले मुस्लिम हुआ और आज हमें इस्लाम सिखाता है, तो मुझे ये आयत याद आ जाती है कि पैदाइशी मुस्लिम फख्र मना रहे हैं, चलो खुशियां मनाओ, जो भी करना है करो, अल्लाह ताला दूसरों को ले आएगा कि जो दीन का काम करेंगे। बहुत बड़ी तंबीह है। कभी किसी बंदे को अल्लाह ताला अगर एक किसी चीज़ की अथॉरिटी दे दे और वो उसका सही इस्तेमाल ना करे तो उसको डरना चाहिए कि अल्लाह ताला जैसे दे सकता है वैसे छीन भी सकता है। इसीलिए किसी जॉब का मिल जाना, किसी ओहदे का मिल जाना, किसी जिम्मेदारी का मिल जाना, सिर्फ मिलना ही नहीं बल्कि उसको फिर बाद में कायम भी रखना है। और हमने अल्लाह ताला से फिर दुआ भी यही करनी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि वो अल्लाह के गिरोह में शामिल हो जाएं। فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, अल्लाह हमें गालिब भी कर दे। रुकू नंबर 13, सेकेंड लास्ट रुकू है आज के सबक का। या अय्युहा लज़ीना आमनू, ए मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त न बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाए हुए हैं, ख्वाह वो इनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफ्फार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। मुझे लगता है ऐसी आयतों की वजाहत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम इनकी वजाहत करते हैं तो लोग सोचते हैं ये हमारे ज़ाती ख्यालात हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल खोल खोल के बात सामने रख दी और एक बार नहीं, सूरत मायदा में गालिबन तीसरी दफ़ा यही मजमून दोहराया जा रहा है। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाह, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते कि ये बेअक्ल हैं। आप कह दीजिए, ऐ यहूदो नसारा, तुम हम में से सिर्फ इस वजह से दुश्मनी करते हो कि हम अल्लाह पर और इसने जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया और जो कुछ इससे पहले उतारा गया उस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फासिक हो। कुल हल उनब्बीकुम बिशर्र मिन ज़ालिका मसूबा, कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नज़दीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर वो गुस्से हुआ और इनमें से बास को बंदर और सुवर बना दिया, और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास से बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं। اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ گئے بھی، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایسا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، وہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ خود کرتے ہیں وہ کام، کیسے روکیں دوسروں کو؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا گیا ان میں سے تو اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے وہ، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش والی ہے، باقی ان میں بہت سارے لوگوں کے اعمال بہت برے ہیں۔ رکوع نمبر 13، اس کا عنوان کیا تھا؟ دین کے دشمن۔ تین علامتیں ہیں دین کے دشمنوں کی اس رکوع میں۔ نمبر 1، دین کو تفریق کا سامان بناتے ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنی، نماز کے لیے پکار آتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دشمنی کی وجہ اس لیے کہ فاسق ہیں اور مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب اذان کی آواز آتی تو ایک کافر تھا وہ مذاق اڑاتا تھا، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار آتی تو کہتا تھا جھوٹا جل کے رسوا ہوا، جھوٹا جل کے رسوا ہوا۔ آپ کو پتا ایک دن کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہ رات کو اس کی لونڈی جو تھی وہ چراغ بند کرنا بھول گئی، اور رات کو اس کے گھر کو آگ لگی اور اس کی بات سچ ہو گئی، وہ خود جل کے راکھ ہو گیا۔ ایسے لوگ کسی دور میں جو دین کا یا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تیسری چیز، ہم نے اس رکوع میں 11 علامتیں دیکھی دین کے دشمنوں کی۔ نمبر 1، فاسق ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، بعض ان میں سے بندر اور سور بنائے گئے، انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، ان کے علماء انہیں گناہوں سے روکتے نہیں، حرام کھانے سے روکتے نہیں، اللہ کو بخیل سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے حق پہ بھی ہیں لیکن اکثر بد عمل ہیں۔ سزا کیا ملتی ہے دین کی اس دشمنی کی؟ سزا کیا ہے؟ قیامت تک آپس میں عداوت، اور کل آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی 5 باتوں کی۔ نمبر 1، ایمان لے آؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی خامیوں کے باوجود بھی لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ جاؤ اب جہنم کا ایندھن بناؤ۔ پھر بھی پکارتے ہیں. دوسری دعوت خدا پرستی کرو نفس پرستی کی بجائے, برائیوں کو دور کرو جنت ملے گی, اور اگر اللہ کی کتاب کو لاگو کرو گے تو آسمان سے بھی رزق ملے گا اور زمین سے بھی. ہم نے اس رکوع پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر ہر اس بات کو لینا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے. نمبر دو, دین کا مذاق نہیں اڑانا, شعوری طور پہ اور غیر شعوری طور پہ. ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جہاں اللہ کے دین کا مذاق ہو, ایسے ڈرامے نہیں دیکھنے جس میں نبیوں کا, سنتوں کا, جنت کا, جہنم کا مذاق ہو. اس دن بک پڑھ کے سنا رہی تھی, اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کسی سٹیج ڈرامے میں کسی مسخرے نے کھڑے ہو کے اذان کو گا گا کے سنایا, اور مطلب یعنی یہ حقیقت میں واقعہ ہوا. سٹیج ڈراموں میں آپ نے دیکھا بڑی حجت بازیاں ہوتی ہیں اور ولگر قسم کی باتیں ہیں, تو اسی میں کوئی کھڑا ہو کے تو اذان دے رہا ہے اور اس کو گانے کے انداز میں, اور پھر کہتے ہیں کہ حاضرین میں سے کسی ایک شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس کو کوئی چیز ماری, اور پھر سارا ماحول جو ہے وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑا کہ یہ کہاں کا دین ہے. کھیل اور تماشے کے نام پہ دین کو مذاق تو نہیں کرنا. اور آخری چیز جو ہم نے اپنے لیے سیکھی کہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اگر میں تقوی اختیار کروں گی تو مجھے بے حساب رزق ملے گا. بہت سارے لوگوں کو متقی بننے سے یہ چیز روکے ہوتی ہے کہ نیک ہوگے تو کھائیں گے کہاں سے, تو تقوی ہوگا تو انشاءاللہ وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں. رکوع نمبر 14, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہ کی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی. آپ کافروں پر غمگین نہ ہو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے, بے شک وہ لوگ بے خوف رہیں گے اور بے غم رہیں گے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل, ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف سے رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی مرضی کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑنا ہوگی, پس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بیٹے مریم کے ہی خدا ہیں, حالانکہ مسیح نے ان سے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا. لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے یعنی ٹرینیٹی, دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ, یہ لوگ کیوں اللہ تعالی کی طرف نہیں جھکتے؟ اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک سچی خاتون تھیں، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو، جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک نہ کسی نفع کے مالک؟ اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت ساروں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ یہ ہے رکوع نمبر 14۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کا نظریاتی انخراب۔ بظاہر یہ دونوں گروہ ایک لگتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پہ بہت مختلف ہیں۔ کیا اس رکوع میں ہم نے کیا دیکھا؟ کہ انہوں نے یعنی نظریات سے کیسے انحراف کیا۔ نمبر ایک، پختہ عہد کے بعد پیغمبروں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اندھے اور بہرے بن کر جیے، حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا، اپنے دین میں ناحق غلو کیا اور سیدھے راستے سے بہک گئے۔ حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کام کیا دیا تھا کہ اللہ کی دین کو عام کرو، ان کتابوں کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے لیے عمل دیکھیں تو اس پورے رکوع میں علماء یہود اور نصارہ پہ تنقید ہے۔ کہا کیا تھا، کیا کیا، نصیب کیا تھا، پہنچ کہاں گئے۔ اصل جو چیز اللہ نے کہی تھی اس کو ماننے کی بجائے اپنی منمانیاں کرنے لگے۔ جو بہت بڑا جرم ادھر پیش ہوا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ چیزوں کو سامنے کیوں رکھا؟ کہ ہم میں سے بھی کوئی اگر دین کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا ہے کہ کیا میں اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچا رہی ہوں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا دین جو ہے نا، اس کے بندوں کے لیے، جب آپ اس کو اصل شکل میں نہیں پیش کرتے نا، تو لوگ نقل کو بھی نہیں لیتے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کھانا پکائیں اور بالکل فریش کھانا کسی کو کہو کہ جاؤ یہ ادھر جا کے دے آؤ، وہ جانے والا آپ کے ساتھ خیانت کرے، اس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہو، نمک کی ایک چمچ ڈال دے اس میں اور چینی ڈال دے، یا کوئی چٹکی زہر کی ڈال دے، یا اس کو ٹیسٹ بگاڑنے کے لیے وہاں اس حال میں دے، چیز تو پہنچ گئی، آپ اس انتظار میں کبھی اس کا فون آئے گا کہ کیسی لگی، بہت اچھی تھی، اس کا فون ہی نہیں آ رہا۔ شاید مروت کے مارے وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن چیز جو اس کے پاس پہنچی وہ نہیں تھی جو آپ نے بھیجی۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا تو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ اس شخص کو کیا دوبارہ کبھی اس کام کے لیے چنیں گے جو اس طرح کے خیانتیں کرے؟ یہی مثال ہے دین کا پیغام دینے والوں کی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بلانے پہ آتے نہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دین کا پیغام لوگوں کو کس طرح کا پیش کر رہے ہیں۔ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر کے پوری بات اسی پہ کر دوں، اصل باتیں چھپا دوں اور دوسری کو ظاہر کر دوں، جس پہ اپنا عمل ہے اس کو ابھار ابھار کے رکھوں اور جس میں اپنا عمل نہیں اس کو دبا دوں۔ یہ ہوتی ہیں دین والوں کی خیانتیں۔ ایک کتاب ہے امام ابن قیم کی، تلبیس ابلیس، بہت مشہور کتاب ہے اور کئی جگہ اس کے ہم حوالے دیتے ہیں تفسیر میں۔ اس کا ایک چیپٹر ہے کہ شیطان دین والوں کو یعنی علم والوں کو کیسے بہکاتا ہے۔ پڑھنے کے قابل ہے، اگر کبھی بھی علم کا کام کرنا ہو، دین کی خدمت، تو پہلے اس کو ضرور پڑھ لیں۔ چھپی چھپی باتیں ہیں کہ جو واقعی انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتی۔ چلیے رکوع نمبر 15، اور یہ آخری ہے یعنی نصف ہے رکوع۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانو لا یتناہون عن منکر، आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते न थे। जो कुछ भी ये करते थे यकीनन ये बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियां करते हैं। जो कुछ इन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है ये बहुत बुरा है कि अल्लाह इनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। और अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर और जो नाजिल किया गया है इस पर ईमान होता तो ये कुफार से दोस्तियां न करते। लेकिन इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। लतदिदन्ना शद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे और ईमान वालों से सबसे ज्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं और इस वजह से कि वो तकब्बुर नहीं करते। बहुत बड़े बड़े हकायक से पर्दा उठा इस रुकू में। इसका उन्वान क्या है? बनी इसराइल पर अंबिया की जुबानी लानत। दो नबियों का नाम लेके अल्लाह ताला ने बताया कि इन नबियों ने लानत भेजी। आपको अजीब नहीं लग रहा? नबियों का काम तो रहमत देना होता है और वो किसी कौम पे लानत करें तो सोच सकते हैं कि उस कौम के बिगाड़ का क्या हाल होगा। ये ऐसे ही है ना कि जैसे कोई दीन वाला जो है वो उस मुआशरे के लिए रहमत का बायस बनता है, उनको बुराइयों से बताता है, बचाता है। लेकिन बाज दफा लोग उसके साथ ऐसा बुरा सलूक करें कि वो उनको बददुआएं देने लगे, लान तान करने लगे। चार बातों का जिक्र है किस वजह से लानत का सबब हुआ। लानत का सबब क्या था? नंबर एक, लोगों को उनकी बुराइयों के इर्तकाब से रोकना छोड़ दिया था। ऐसा कब होता है? जब इल्म वाले अपनी जाती चीजों बड़ाई, अपनी जिसको कहते हैं ना नफ्सियाती किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं तो लोगों को बुराइयों से रोकना छोड़ देते हैं। मैं आज के दौर में इसको देखती हूँ। आज कितनी बुराइयां आम है ना, फहाशी देख लीजिए, मीडिया को देखिए, मुसलमानों के, मैं अपने मुल्कों की बात कर रही हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रही। इसके बावजूद हमारे मस्जिदों में अमूमन जो दीन के नाम पर काम होता है वो मसलक की बुनियाद पर होता है। इख्तलाफात हैं, नमाज में हाथ कहाँ बांधेंगे, वजू कैसे करेंगे, और जो बड़ी बड़ी बुराइयां फैल, सूद हर दिन आम हो रहा है, लोगों ने एक जाल फैलाया में फहाशी के, उस पर बात कम है। क्यों? कि तवज्जो बट गई। काम क्या था? वही आयचात कीजिए कि या मरून बिल मारूफ व यनहाउन अनिल मुनकर। उससे पहले क्या था? यदून इलल खैर। खैर की तरफ नहीं बुलाते तो दूसरी तरफ कहाँ जाएंगे? यानी एक खलत मलत है। मुझे तो यही लगता है कि तनासुब बिगड़ गया। जैसे खाने में आप तनासुब बिगाड़ लें तो आपका लजीज खाना बिगड़ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह आज दीन के खिदमतगारों ने तनासुब बदल दिया। अपनी मर्जी से मर्च मसाला बढ़ा लिया, कहीं मीठा कम कर दिया, कहीं नमक कम कर दिया, और जो दीन सामने आता है वो क्या है कि गुनाहगारों को खुली छुट्टी मिली हुई है, जो मर्जी करो, और सारी सख्ती आई हुई है दीन वालों की कि तुम ये क्यों करते हो और तुम ऐसे क्या करते हो। जब लोग आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं, असल बुराइयां वहीं पड़ी रहती हैं और लोग जो हैं वो फिर रुख्सत लेते हैं, अच्छा तुम लड़ो, हम अपना काम करते हैं। आपको पता है कि आज के दौर में जो दीन वालों को लड़ाने की साजिशें, ये पीछे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की हैं। क्यों? कि ये दीन वाले आपस में लड़ते रहें और हमें अपना काम करना आसान हो जाए। बाज हुक्मरान जो खुद उस मुल्क के हुक्मरान होते हैं वो उस मुल्क में फसाद करवाते हैं, झगड़ाते हैं दूसरी कौमों को दूसरे वालों से। क्यों? तुम झगड़ो, कौम इन झगड़ों में रहे और हमें अपने बाजार सीधे करने की आसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला ने इनके एक बात क्या बताई कि बुरे कामों पे रोकते नहीं थे। दूसरी बात अल्लाह ताला ने इसमें हमें इनकी ये बताई कि अल्लाह ताला और अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों से दोस्तियां करते हैं। सच है? फिर बताया कि अल्लाह ताला इन पर गजबनाक है। और आखिरी बात क्या है कि ये दायमी अजाब में है, क्योंकि ऐसे लोग मुजरिम है ना, पूरी कौम का अजाब इनके ऊपर आएगा। अल्लाह ताला ने हमें इस रुकू में जो बात सिखाई, जो मेरे अमल की और आपके अमल की है, वो क्या है कि हमने बुराइयों पे लोगों को तौफीक के मुताबिक हिकमत अमली के साथ रोकना है, دوسری بات ہم نے کیا بتائی کہ دشمن اور دوست کا فرق پہچاننا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ دشمن کہہ دیتا ہے ان سے معاملات کرتے ہوئے محتاط رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رہنمائی عطا فرمائے, جو باتیں ہم سنیں سنائیں کہیں اس کے اوپر خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.